الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بھائیو دوستو عزیز و بزرگو، اللہ کا بندہ ہونے کے ناطے اللہ کے دین کا پابند بننا اور نبی کا امتی ہونے کے ناطے نبی کے دین کا مددگار بننا، اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو اجتماع کے نام پر پہنچایا ہے. دنیا میں بسنے والے جتنے انسان ہیں ان سب کا تعلق اللہ کی ذات سے کیسے جڑ جاوے، اس کی یہ محنت ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو کسی نہ کسی سے جوڑنے کے لیے کوئی ذریعہ رکھا ہے. کاغذ کو کاغذ سے جوڑنے کے لیے گوند کی ترتیب ہے، گندر سے کاغذ چپک جاتا ہے. لوہے کو لوہے سے جوڑنا ہو تو ویلڈنگ ہوتا ہے. کپڑے کو کپڑے سے جوڑنے کے لیے سلائی کام ہے، سوئی دھاگا. اینٹ کو اینٹ سے جوڑنے کے لیے سیمنٹ رہتی ہے کہ اینٹیں مل کر دیواریں، دیوار مل کر مکان بنتا ہے. تو ہر چیز کسی نہ کسی سے جڑتی ہے. ایسے مولانا عمر صاحب پالنپور رحمتہ اللہ علیہ فرماتے تھے، ساری انسانیت اللہ سے کیسے جڑ جاوے اس کے لیے دینی اجتماع ہے. یہ اجتماع کوئی خالی بھیڑ جمع کرنے کا نام یا کوئی میلے کی شکل نہ ہو کہ بس آ گئے اجتماع میں، بلکہ تو بہت فکر کی بات ہے. کیسے گئے گزرے زمانے میں، اللہ تعالی ہم سب کو ایمان اعمال کی بات کو سننے کے لیے جمع فرماتے ہیں. تو اللہ تعالی نے ہم سب کو دین کی بات کو سننے کے لیے جمع فرمایا. دین کی بات گھنٹوں سننی پڑتی ہے، آدمی گھنٹوں سنے تب بات سمجھ میں آتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کی صفت ذکر فرمائی، سمعنا و اطعنا، کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی. کہ اللہ تعالیٰ نے زبان ایک دی، کان دو دیے کہ آدمی سنے. اس دعوت کی مبارک محنت میں تعلیم کے عمل کے ذریعے سے سننے کا نظام فرمایا. دعوت کی مبارک محنت میں جو مقامی پانچ اعمال ہے، لوگوں کے پاس جانا اور ایمان اعمال کی بات کرنا، تو سننے کا اللہ تعالیٰ نے نظام فرمایا ہے. اس لیے ایمان اعمال کی بات کو تو بہت سننا چاہیے. اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس محنت کو جاری اور ساری فرمایا، اور اللہ نے محنت کو آسان رکھا. محنت بہت آسان ہے، ہر ایک کر سکے، پڑھا لکھا کر سکے، ان پڑھ کر سکے، عالم کر سکے، جاہل کر سکے، مشغول کر سکے، فرصت والا کر سکے. اللہ تعالیٰ نے ایسی سیدھی ساری محنت دی ہے. اس لیے بہت دھیان توجہ سے بات کو سننا، توجہ درکار ہے. اس لیے اجتماع کیے جاتے ہیں تو ایک بات سمجھائی جاتی ہے، بولنے والے کی تاثیر نہیں ہے، سننے والوں کی تاثیر ہے. اور پھر مثال دی جاتی ہے بھینس کے دودھ کی اور جانور کے بچوں کی. جسے بھینس دوہی جاتی ہے، بکری دوہی جاتی ہے، تو بھینس کا بچہ بکری کا بچہ طلب کے ساتھ منہ مارتا ہے تو اللہ اس کے تھنوں میں دودھ اتارتا ہے. انسان کی بھی یہی مثال ہے کہ ماں کی چھاتیوں میں دودھ نہیں ہے، بچہ طلب کے ساتھ ہاتھ پیر مارتا ہے. جب بچہ ہاتھ پیر مارتا ہے اللہ تعالیٰ ماں کی چھاتیوں میں دودھ اتارتا ہے. اسی کو ہماری زبان میں پاسا دلانا کہتے ہیں، گجراتی میں وپاہو دیوڑا. وہ جسے جانور کا دودھ دونے سے پہلے جانور کو چھوڑ دیا جاتا ہے بچے کو، اور بچہ طلب کے ساتھ منہ مارتا ہے. جب منہ مارتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھینس کے تھنوں میں، گائے کے تھنوں میں اور بکری کے تھنوں میں دودھ اتارتا ہے. ایسے بولنے والے کی تاثیر نہیں ہوتی، سننے والوں کی تاثیر ہوتی ہے. تو سننے والا طلب کے ساتھ، دھیان کے ساتھ جب دین کی بات کو سنتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ مجمع کی ضرورت کی باتوں کو نکلواتا ہے. اس لیے ابھی ہم لوگ اجتماع میں آئے ہیں، اور اجتماع کے علاوہ گھر جانے کے بعد بھی ہماری مسجد میں جو نظام ہے, تعلیم کا نظام ہے, گشتوں کا نظام ہے, یہ دعوت کی مبارک محنت کا نظام ہے, اس میں ہم سب کو طلب کے ساتھ ان باتوں کو سننا چاہیے. اسے پورا مجمع طے کرے, ہم سب ان باتوں کو انشاءاللہ طلب اور دھیان کے ساتھ سنیں گے. دین ہم سب کی بہت بڑی ضرورت ہے. جیسے دانا پانی ہوا دنیا میں ضروری ہوتا ہے, اس سے کئی گنا زیادہ دین کی اہمیت ہے. اس لیے مرنے کے بعد کی زندگی میں دین کے بارے میں پوچھا جائے گا. ہم سب دنیا میں آئے, دنیا میں آنے سے پہلے ہم سب کو ایمان کے بارے میں سبق دیا گیا تھا. ہم سب دنیا میں پیدا نہیں ہوئے تھے, ہم سب کو پیدا ہونے سے پہلے ہم سب کی روحوں کو عالم ارواح میں جمع کیا تھا, اور اللہ تعالیٰ نے عہد الست لیا تھا اور ہم سب کی روحوں سے پوچھا تھا, الست بربکم, کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں. اور دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے ایمان کا سبق دیا, اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ایمان کے بارے میں پوچھا جائے گا. آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے, مر کے قبر میں چلا جاتا ہے, تو قبر میں ہر ایک سے تین سوال ہوتے ہیں, من ربک و من نبیک و ما دینک. تو دنیا میں آنے سے پہلے اللہ نے ایمان کا سبق دیا, اور دنیا سے جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ایمان کے بارے میں پوچھیں گے. اگر بچپن سے لے کے موت تک کی زندگی ایمان اعمال والی اور دین والی گزاری ہے, تو زبان سے نکلے گا کہ ربی اللہ. اور اگر زندگی ایمان اعمال والی نہیں گزاری ہے تو آدمی کہے گا لا ادری, ہائے افسوس, ہائے افسوس, مجھے کچھ نہیں معلوم. اس لیے دنیا میں جیسے امتحان ہوتا ہے اسکول میں مدرسے میں, ایک تو تین ماہ پہ امتحان ہوتا ہے, ایک چھ ماہ پہ امتحان ہوتا ہے, ایک سالانہ امتحان ہوتا ہے جس کو کچی پریکشا کہتے ہیں, بیچ میں امتحان لیا جاتا ہے, وارشک پریکشا سالانہ امتحان ہوتا ہے جس کو پکی پریکشا دیہاتوں میں کہتے ہیں. ایسے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہے, ہم اپنی مرضی سے آئے نہیں ہیں, اللہ کے بھیجنے سے آئے ہیں. اور آدمی اپنی مرضی سے دنیا سے جا بھی نہیں سکتا, اور اس دنیا میں آدمی کچھ لے کے نہیں آیا, اور اس دنیا سے آدمی کچھ لے کے نہیں جائے گا. تو آدمی نہ اس دنیا میں کچھ لے کے آیا ہے, نہ دنیا سے کچھ لے کے جائے گا. مٹھی باندھ کے آدمی آتا ہے, خالی ہاتھ دنیا چھوڑ کے چلا جاتا ہے. بلکہ جس دن دنیا میں جنم لیا تھا, ہماری بڑی عورتوں نے ہم کو جو کپڑا پہنایا تھا پہلے دن, وہ ایک بالش تک کا ہوتا ہے, اسے نہ جیب ہوتا ہے نہ وہ سلا ہوا ہوتا ہے. اور انسان کا انتقال ہوتا ہے تو اسے کفن پہنایا جاتا ہے, وہ کفن بھی نہ سلا ہوا ہوتا ہے نہ اسے جیب ہوتا ہے. تو یہ ہم سب کو سمجھایا گیا. اس لیے دنیا کی زندگی تو بہت مختصر ہے, اصل زندگی مرنے کے بعد کی ہے, اور مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہے. دنیا کی زندگی تو بہت مختصر ہے, مرنے کے بعد کی زندگی کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. دنیا کی زندگی 60-70 سال کی, وہاں کا ایک دن 50,000 سال کا, تو وہاں کی پوری زندگی کو تو آدمی سوچ ہی نہیں سکتا. وہاں کے ایک دن کے مقابلے میں دنیا کی زندگی 2.5 منٹ کی ہو سکتی ہے, اور اتنی لمبی ابد الآباد کی کبھی نہ ختم ہونے والی اتنی بڑی زندگی کے لیے اللہ تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کو معیار بتایا. دنیا کی زندگی کو معیار بتایا کہ اس زندگی میں جو کرو گے مرنے کے بعد اس کا بدلہ پاؤ گے. حضرت مولانا امام صاحب رحمۃ اللہ فرما کرتے تھے, بھلے کا انجام برا نہیں ہو سکتا, برے کا انجام بھلا نہیں ہو سکتا. جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ سمجھو تو کر کے دیکھو, نہ مانو تو مر کے دیکھو, جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے. جیسی کرنی ویسی بھرنی, نہ سمجھو تو کر کے دیکھو, نہ مانو تو مر کے دیکھو, جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے. یہ جنت اللہ تعالیٰ کا مہمان کھانا ہے, اور دوزخ اللہ تعالیٰ کا قید کھانا ہے. جسے قید خانے میں آدمی پابند ہوتا ہے, آزاد نہیں ہوتا, ایسے ایمان والا دنیا میں آزاد نہیں ہے, پابند ہے. ہر کام میں ایمان والا پابند رہے گا, سنت شریعت کا پابند رہے گا. इसलिए कोशिश इस बात की है हम सबकी जिंदगी में अल्लाह का मुबारक दीन कैसे आवे, और दीन की कदर और कीमत अल्लाह की निगाह में है। दुनिया वालों के सामने दीन की कोई कदर और कीमत नहीं है, लेकिन अल्लाह की निगाह में दीन की बड़ी कदर और कीमत है। ये दीन ईमान की मजलिस है, आखिरत के तस्करे हैं, और दीन हम सबकी जिंदगियों में कैसे आ जावे ये इसकी मेहनत है। इसलिए समझाया गया, मिसाल दी गई कि एक उस्ताद जी अपने बच्चों को मदरसे में मसाइल पढ़ा रहे थे और दीन सिखा रहे थे, तो बच्चों को तरकीब दी जाती है कि मैं तुझे बहुत कीमती मसला सिखा रहा हूं, तो उस्ताद कीमती मसला कह के बहुत सारे मसले बच्चों को सिखा दिए मकतब के बच्चों को। तो पुराने पहले के जमाने की बात है, उस्ताद जी ने बच्चे को कीमती मसाइल कह के बहुत सारी बातें सिखा दी। वो बच्चा गरीब था, उसका चप्पल टूट गया, उसके पास पैसा नहीं था, उसे सिलाने की जरूरत पड़ गई, मोची के पास गया, पैसा तो था नहीं। बच्चे ने मोची से कहा कि मेरा चप्पल सी दे, मैं तुझे दो मसले सिखाऊंगा। तो मोची ने कहा मसले बसले नहीं चल रहे, यहाँ तो पैसा चाहिए, आने चाहिए, आपके पास पैसे है? पहले चारानी अठन्नी चलती थी, तो कहे यहाँ मसले नहीं चलते, यहाँ तो पैसा चाहिए। बच्चा निराश हो गया, मायूस हो गया कि उस्ताद ने तो मुझे कीमती कीमती कह के बहुत सारी चीजें सिखा दी, लेकिन एक ऐसा मसला कि मोची चप्पल और जूता नहीं सी देता, तो वो मसला मेरे क्या काम का। उस्ताद जी के पास आया और उस्ताद को आके कहा कि आपने तो कहा मैं मुझे बहुत कीमती चीजें सिखाऊंगा, लेकिन मेरा तो मोची चप्पल भी नहीं सी देता। उस्ताद समझ गए कि ये समझा नहीं है, तो उस्ताद के पास एक हीरा था मोती, उसको दिया, और वहां एक वो बकाले वाला साकबजी की लाड़ी वाला थैले वाला जा रहा था, प्याज बटा के प्याज आलू की आवाज लगा रहे था। कहा कि देखो उसके पास जाओ और वहां जाके इसकी कीमत करवा के लाओ, बेचना नहीं है। तो साकबजी बेचने वाला सब्जी बेचने वाला थैला लेके जा रहा था, बच्चा वहां गया और वहां जाके कहा कि इसकी क्या कीमत है। तो उसने उसको मोती को देखा तो कहा कि मेरे किसी काम का नहीं है, अगर तुझे बेचना हो तो मैं तुझे एक प्याज और एक आलू दे दूंगा, मेरे बच्चे उसे खेलेंगे। तो कहा मुझे बेचना नहीं है, मुझे कीमत करवानी है। वो वापिस आ गया उस्ताद के पास और कहा कि इसकी कीमत तो एक प्याज एक आलू हो सकती है। उस्ताद ने उसको सुनार के यहाँ झबेरी के यहाँ भेजा, इसको बेचना नहीं है, कीमत करवा के लाओ। तो ये झबेरी के पास गया और झबेरी के पास जाकर उसने उसको दिया कि इसकी क्या कीमत है। तो उसने आंखों में मशीन लगा के उसको घुमा घुमा के देखा, उसको कह के इतना कीमती मोती तुम कहां से लाए, इतना कीमती मोती, ये तो इतना कीमती है कि ये मेरा जितना सोना चांदी और फर्नीचर मेरी पूरी दुकान तुझे दे देवे तो भी इसकी कीमत नहीं बन सकती है, वक्त का बादशाह इसको खरीद सकता है। कब मुझे बेचना नहीं है, मैं वापिस आऊं। तो पहले साकभाजी वाले के पास गया तो इसको प्याज आलू ही उसकी कीमत बन सकती थी, वो जानता ही नहीं था। और जब झवेरी के पास गया तो उसने बहुत सारी उसकी कीमत लगाई, तो उस्ताद जी ने कहा कि हर चीज की कीमत उसकी मार्केट में होती है, दीन की कदर कीमत अल्लाह की निगाह में है, दीन की कदर कीमत अल्लाह की निगाह में है, वो दीन हम सबकी जिंदगी में कैसे आ जावे। और कामयाबी अल्लाह ताला ने हम सबकी अपने मुबारक दीन में रखी है, हम सब भी ये चाहते हैं कि हम कामयाब हो जावे और अल्लाह भी ये चाहते हैं कि मेरे बंदे कामयाब हो जावे। हम सब कामयाबी अपने दिमाग से अपनी समझ के एतबार से चाह रहे हैं और अल्लाह ताला हम सबको बहुत बड़ी कामयाबी देना चाहते हैं। अल्लाह अपनी शान के मुताबिक हम सबको कामयाब करना चाहते हैं और हम सब अपने दिमाग के मुताबिक कामयाबी को चाहते हैं, तो अल्लाह ताला तो हमको बहुत बड़ी कामयाबी देना चाहते हैं। सारी दुनिया में जितनी दौड़ धूप है, सारी दुनिया में जितने लोग थक रहे हैं, वो कामयाब होना ही चाहते हैं और अल्लाह भी हमें कामयाब करना ही चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि असल कामयाबी क्या है। दुनिया की राहत राहत नहीं है, दुनिया की तकलीफ तकलीफ नहीं है, असल तकलीफ आखिरत की तकलीफ है और असल राहत आखिरत की राहत है। दुनिया में जो कुछ है वो सब नमूना और सैंपल है, दुनिया का मकान सैंपल है, दुनिया की औरतें सैंपल है, दुनिया की चीजें, दुनिया का पैसा, यहाँ की राहत के जितने सामान और ये वो सब का सब सैंपल और नमूना है। असल तो मरने के बाद की जिंदगी में है। जन्नत अल्लाह का मेहमान खाना है। जन्नत में ईमान वालों को अल्लाह ताला ऐसी ऐसी नेमतें देगा जो न किसी कान ने सुनी, न किसी आंख ने देखी, न किसी के दिलों ख्याल में दिल के अंदर वहमो ख्याल गुजरा। ऐसी ऐसी नेमतें अल्लाह ताला मरने के बाद की जिंदगी में देगा। तो अल्लाह ताला तो दीन के जरिए से हमें कामयाब करना चाहते हैं, और कामयाबी दीन में है। आदमी दीन पर चलता है तो कामयाब होता है। अल्लाह वालों ने समझाया है, मिसाल दी है, रमजान के महीने में आदमी रोजा रखता है और इफ्तारी के मौके पे अल्लाह ताला कैसी नेमतों से नवाजता है कि रमजान के महीने में अल्लाह ताला मोमिनीन के ऊपर नेमतों की बौछार बरसाता है। बल्कि गरीब से गरीब आदमी को रमजान में जो नेमतें मैसर होती है, मालदार आदमी साल भर ख्वाब में भी नहीं देखता। हम सबको मालूम है इफ्तारी में क्या क्या नहीं होता, किस्म किस्म के फ्रूट, किस्म किस्म के शरबत, किस्म किस्म के भजिए और चिकन दाने और सीख कबाब और समोसे, और अगर गिनना चाहे तो सब बोलेंगे तो भी आइटमें खत्म नहीं होगी। इतनी सारी नेमतें मिलती है। ये सारी नेमतें जाने दो, खाली इतना सोचो रमजान जाने के बाद तरबूज किसने देखा, जो 5-10 रुपए किलो मिलता है वो भी खाया रमजान के बाद। और रमजान में तो खजूर कैसी और कैसे किस्म किस्म के फ्रूट, ये रोजे की बरकत। तो रोजा रखना अल्लाह का एक हुक्म पूरा करते हैं, अल्लाह नेमतों से नवाजते हैं। बल्कि इफ्तारी के मौके पे तो एक ही किस्म की प्लेटें सजाओ, और जब मस्जिद में ऐलान हो इफ्तारी का तो एक रोजदार को प्लेट दे दो और एक प्लेट बेरोजदार को दो जिससे रोजा नहीं रखा। जब ऐलान हो जावे इफ्तारी का वक्त हो चुका है, रोजा खोलो और दोनों को खाना शुरू करो। सच बताओ किसको मजा आएगा? बल्कि किस्म किस्म की नेमतें बेरोजगार को दो और खाली चटनी रोटी, सब्जी रोटी या खजूर पानी ये रोजगार को दो, और बगैर रोजे वालों को किस्म किस्म की नेमतें दो और दोनों को खाना शुरू करो। तो रोजगार को जो चटनी रोटी में मजा आएगा, मिर्च और रोटी में जो मजा आएगा, खजूर और पानी में जो मजा आएगा, सच बताओ ये अच्छी अच्छी नेमतों में ये भी रोजगार को मजा आएगा। हदीस में लिस्साई में फरहतान, रोजगार के लिए दो खुशियां हैं। एक खुशी जब बंदा रोजा खोलता है तो रोजा खोलने के मौके पर होती है, वो खुशी दुनिया के किसी मार्केट में नहीं मिलती। वो कहा गया ना, भूख अल्लाह के खजाने से आती है। पैसों के जरिए से आदमी खाना खरीद सकता है, दुनिया में कहीं भूख नहीं खरीदी जा सकती। पैसों के जरिए से एसी खरीदो, गद्दा खरीदो, डल्लॉप खरीदो, लेकिन नींद कहीं खरीदी भी नहीं जा सकती, वो तो अल्लाह की तरफ से आती है। तो रोजा खोलने के मौके पे रोजगार को जो मजा आता है, दुनिया के किसी मिनिस्टर को भी वो रोजा के वो मजा मिल नहीं सकता। तो सुबह से लेकर शाम तक भूखा रहना, अल्लाह का एक हुक्म पूरा किया तो अल्लाह ने ऐसी नेमतें और इतनी खुशी दी। अगर ईमान वाला सुबह से लेकर शाम तक और पूरी जिंदगी में जितने अहकाम है उन सारे अहकाम को और पूरे दिन पर अमल करने वाला बन जावे तो कितना मजा आ जावे। मजा ही मजा है, दीन पर चलने में मजा है। तो भाई दोस्तों बुजुर्गों, अल्लाह ताला ने कामयाबी हम सब की अपने मुबारक दीन में रखी है, तो हम सब भी ये चाहते हैं हम सब कामयाब हो, और अल्लाह भी ये चाहते हैं कि मेरे बंदे कामयाब हो। अल्लाह सबको कामयाब करना चाहता है। जब कामयाबी समझनी पड़ेगी, अल्लाह ने आखिरत की कामयाबी को कामयाबी कहा है और हम दुनिया की चीजों को कामयाबी समझ रहे हैं। किसी बहुत बड़े अल्लाह वालों ने मिसाल देकर, एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश की है कि 4-5 दोस्त थे, अलग अलग इलाके के रहने वाले थे, अलग अलग बोली जानते थे, अलग अलग मुल्कों के 4-5 दोस्त थे, वो जमा हो गए और जमा होते घूमने के लिए कहीं दूर जंगल निकल गए, बहुत दूर गए, सबको लगी भूख। चाहे इनकी दोस्ती हो गई थी लेकिन जबान नहीं जानते थे। कोई हिंदुस्तान के रहने वाला हिंदी जानता था, कोई अरबस्तान के रहने वाला अरबी जानता था, कोई इंग्लिशस्तान के रहने वाला इंग्लिश जानता था, कोई पर्शियन जानता था, कोई जर्मनी की जबान जानता था, सब अलग अलग भाषाएं जानते थे। अब बहुत दूर निकल गए, सबको लगी भूख, सोचा के खाना खावे। एक आदमी को बस्ती में भेजो, खाना खरीद के लेके आवे। कहा ठीक है, तो एक आदमी तैयार हुए, बोले क्या खाएंगे, क्या लाना है, जिससे क्या होता है सबको खाना, बोले क्या लाएंगे, तो कोई गिनवा ये लाना ये लाना, ऐसे तय कर रहे क्या खाना। तो हिंदुस्तान वाला बोला कि मैं अंगूर खाऊंगा, हम लोग जानते ना अंगूर द्राक्ष, तो हिंदुस्तान वाला बोला कि मैं अंगूर खाऊंगा। जैसे हिंदुस्तान वाला बोला मैं अंगूर खाऊंगा, तो एक अरबी अरबी जानता था, अरबस्तान वाला बोला मैं अंगूर नहीं खाता, अनौरी दल इनब, अरबी में अंगूर को इनब कहते। तो हिंदुस्तान वालों ने कहा कि मैं तो अंगूर खाऊंगा, तो अरबस्तान वाला बोला कि मैं तो इनब खाऊंगा, मैं अंगूर नहीं खाऊंगा। एक इंग्लिस्तान वाला इंग्लिश जानता था, वो न हिंदी जाने न इंग्लिश जाने न वो अरबी जाने, तो उसने कहा कि मैं तो ग्रेप्स खाऊंगा। अब इंग्लिश में अंगूर को ग्रेप्स कहते हैं, तो हिंदुस्तान वाला कहता है मैं अंगूर खाऊंगा, और अरबी बोला कि मैं इनब खाऊंगा, और अंग्रेजी वाला बोला कि मैं ग्रेप्स खाऊंगा। तो एक फारसी जानता था पर्शियन, तो पर्शियन वाला बोला कि मैं तो न अंगूर खाऊंगा न ग्रेप्स खाऊंगा न इनब खाऊंगा, मैं तो रस खाऊंगा। फारसी भाषा में अंगूर को रस कहते, उससे कहा मैं रस खाऊंगा। तो एक जर्मनी का रहने वाला था, तो जर्मनी की भाषा अलग, तो जर्मनी वाला कह रहा है कि न मैं अंगूर खाऊंगा न इनब खाऊंगा न ग्रेप्स खाऊंगा न रस खाऊंगा, मैं तो उस्ताफीन खाऊंगा। जर्मनी में अंगूर को क्या कहते जी, उस्ताफीन, और इंग्लिश में जी ग्रेप्स, सुनने वाले बोलो इंग्लिश में, और अरबी में इनब, अरबी में इनब, और फारसी में रस, फारसी में क्या कहवे रस, फारसी में रस कहवे, और इंग्लिश में ग्रेप्स कहवे, और अरबी में इनब कहवे, और हिंदी में अंगूर कहवे, और जर्मनी में उस्ताफिन। अब ये शब्दों की हेरा फेरी से झगड़ा हुआ, भाषा न जानने से इनको झगड़ा हुआ। अब सब परेशान, एक बोले इनब लाओ, एक बोले ग्रेप्स लाओ, एक बोले रस लाओ, एक बोले उस्ताफिन लाओ, एक बोले ग्रेप्स लाओ। अब इनको झगड़ा हुआ। एक आदमी मौली साहब जैसा था, समझदार था, वो आया कि झगड़ा मत करो, हिंदी से कहा तुमको क्या खाना है, पैसा लाओ मैं अंगूर लाऊंगा, अरबी से कहा क्या खाना है इनब, पैसा लाओ मैं इनब लाऊंगा, और इंग्लिश वाले से कहा क्या खाना है ग्रेप्स लाओ, पैसे मैं ग्रेप्स लाऊंगा, और फारसी वाले से कहा क्या खाना है वो क्या बोला होगा, रस लाओ पैसा मैं रस लाऊंगा, और वो जर्मनी वाले से कहा तुम्हारी भाषा में क्या बोलते है, उस्ताफी, बोले पैसा लाओ मैं उस्ताफी लाऊंगा। सबसे उसने पैसा लिया, और पैसा लेके गया बाजार, और द्राक्ष की लुंखी लेके आ गया, अंगूर की झुंकी लेके आ गया, खोशा लेके। अब हिंदुस्तान वाला भी खुश अंगूर देख के, और अरबस्तान वाला भी खुश इनब देख के, और फारसी वाला भी खुश रस देख के, और इंग्लिश वाला भी खुश ग्रेप्स देख के, और जर्मनी वाला भी खुश उस्ताफीन देख के। अल्लाह वालों ने इस मिसाल को देखकर यह समझाया कि शब्दों की हेरा फेरी और अल्फाज का तगैयुर और भाषा न जानने से झगड़े हुए थे, चाहते सब एक ही चीज थे, लेकिन जानते नहीं थे जो झगड़ा हुआ था। अल्लाह वालों ने समझाया, सारी दुनिया का यही हाल है, जैसे मौली साहब जैसा समझदार आदमी अंगूर का खोशा लेके आ गया, ऐसे अगर जिंदगी में दीन आ जाता है तो मजे ही मजे है, और कामयाबी ही कामयाबी है। तो कामयाबी अल्लाह ताला ने हम सबकी अपने मुबारक दीन में रखी है, वो अल्लाह का मुबारक दीन हमारी जिंदगी में आ जाएगा। अगर दीन जिंदगी में आएगा तो दीन जिंदगी में बरकतों को लेके आता है, मोहब्बत को लेके आता है, भाईचारगी को लेके आता है। अगर दीन जिंदगी में आ गया तो आदमी कामयाबी ही कामयाब है। कोशिश इस बात की होनी चाहिए हमारी जिंदगी में अल्लाह का दीन आ जाए। दीन किसे कहते हैं? दीन कहते हैं जिंदगी गुजारने का वो खुदाई तरीका जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर आए, खाने में पीने में उठने में बैठने में चलने में फिरने में मौत मैयत में रंजर इबाद में, इन सब में जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक तरीके आ जावे। दीन में सबसे बड़ा मर्तबा ईमान का है कि दुनिया की किसी चीज से कुछ नहीं होता, अल्लाह से होता है। दुनिया की तमाम चीजें अल्लाह की मोहताज, اللہ کسی کا محتاج نہیں. اس لیے اللہ اجل سے ہے ابد تک رہیں گے. یعنی اس وقت جتنی چیزیں ہیں وہ پہلے نہیں تھی, ابھی ہے بعد میں نہیں ہوگی. اس وقت جتنی چیزیں ہیں, چاہے پتھر ہو, مکان ہو, گھر ہو, گاڑی ہو, پیسہ ہو, دنیا کا جو کچھ بھی ہے اللہ کے علاوہ, وہ پہلے نہیں تھا, ابھی ہے, بعد میں نہیں ہوگا. اللہ پہلے بھی تھا, ابھی بھی ہے, بعد میں بھی رہے گا. اللہ اجل سے ہے اور ابھی بھی ہے اور ابد تک رہے گا. کچھ نہیں ہوگا تو بھی اللہ ہوگا. تو اللہ پہلے بھی تھا جسے اجل کہتے ہیں, اور ابھی بھی ہے حال میں اور ابد تک رہے گا. چیزیں پہلے نہیں تھی, جتنی بھی چیزیں, چاہے مائک ہو, چاہے چادر ہو, چاہے موبائل ہو, چاہے لوہا ہو, چاہے کھانے پینے کی چیز, پینے کی چیزیں ہو, یہ پہلے نہیں تھی, ابھی ہے. چیزیں پہلے نہیں تھی, ابھی ہے اور بعد میں بھی نہیں ہوگی, بعد میں ختم ہو جائے گی. تو اللہ پہلے بھی تھا, ابھی بھی ہے, بعد میں بھی رہے گا. چیزیں پہلے نہیں تھی, ابھی ہے, بعد میں نہیں ہوگی. انسان پہلے نہیں تھا, ابھی ہے, لیکن انسان ختم نہیں ہوتا, ایک دنیا سے دوسری دنیا میں منتقل ہوتا ہے. میری عمر 50 سال کی ہے تو 52 سال پہلے میں نہیں تھا. کسی کی عمر 70 سال کی ہے, 71 سال پہلے وہ نہیں تھا. کسی کی عمر 100 سال کی ہے تو 101 سال پہلے وہ نہیں تھا. تو اللہ پہلے بھی تھا, ابھی بھی ہے, بعد میں بھی رہے گا. چیزیں پہلے نہیں تھی, ابھی ہے, بعد میں نہیں ہوگی. اور انسان کیا سمجھتا ہے کہ مر کے مٹی ہو جائیں گے؟ ایسا نہیں ہے. ہم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں پیدا کیا ہے جو پہلے نہیں تھے, ابھی ہے, لیکن مر کر مٹی نہیں ہونا ہے. اصل زندگی مرنے کے بعد کی ہے. انسان اس دنیا سے دوسری دنیا میں جاتا ہے. اگر ایمان اعمال والی زندگی گزاری ہے, دین والی زندگی گزاری ہے, تو ہمیشہ ہمیں جنت میں رہے گا. اور اگر بے دینی کی زندگی اور بغیر ایمان کی زندگی گزاری ہے تو بے ایمان آدمی کو دوزخ میں جانا پڑے گا. تو چیزوں تو پہلے نہیں تھی, ابھی ہے, بعد میں نہیں ہوگی. تو انسان کا ایسا نہیں ہے کہ پہلے نہیں تھا, ابھی ہے, بعد میں انسان بھی نہیں ہوگا, بلکہ انسان پہلے نہیں تھا, ابھی ہے, اور یہ بس پیدا ہو گیا تو انسان مرتا نہیں ہے, ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہوتا ہے. اگر ایمان اعمال والی زندگی گزاری ہے تو ہمیشہ ہمیشہ اس کو جنت میں رہنا ہے. اور اگر بے دینی کی زندگی گزاری ہے اور ایمان سے ہٹ کر زندگی گزاری ہے تو اس کو بہت تکلیف پڑے گی. ہر انسان سے اللہ تعالیٰ 5 سوال کریں گے. ان عمری فیما افنا, کہ زندگی کا ختم کی, جوانی کو کہاں ختم کیا, مال کہاں سے کمایا, مال کہاں خرچ کیا, اور جتنا جانتے تھے اس پر کیا عمل کیا. حدیثوں میں ہے کہ اللہ تعالیٰ کل قیامت میں میدان محشر میں انسان کو کھڑا کر کے ہر ایک انسان سے سوال ہوگا. زندگی کے بارے میں سوال ہوگا, جوانی کے بارے میں سوال ہوگا, مال کہاں سے کمائے خرچ سوال ہوگا, مال کہاں خرچ کیا وہ سوال ہوگا, اور جتنا جانتے اس پر کیا عمل کیا, یہ ہر ایک سے سوال ہوگا. اور 5 سوالوں کا واجبی اور معقول جواب نہ دے دیوے آدمی کے قدم محاسبہ اور حساب کی جگہ سے نہیں ہٹیں گے. آدمی کا جواب دینا پڑے گا. تو ہم اپنی مرضی سے دنیا میں آئے نہیں ہیں, اپنی مرضی سے جا نہیں سکتے, تو بیچ کی زندگی اپنی مرضی سے کیسے گزارنا, بلکہ اس کو اللہ تعالیٰ کے تابع ہو کے دین والی زندگی گزارنا ہوگا. یہ جو دعوت کی مبارک محنت ہے, دعوت کی مبارک محنت سے یہی بات کہی جاتی ہے. اس لیے اللہ نے ہم سب کو دنیا میں بھیجا ہے اور مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کرنے کے لیے بھیجا ہے کہ ہم سب اس دنیا میں رہ کے مرنے کے بعد کی زندگی کی تیاری کیسے کریں. دنیا میں رہ کے طریقہ صحیح کرنا, ایسا نہیں کہا جاتا سب کچھ چھوڑ دو اور ملنگ بن جاؤ. اسلام نے ملنگ بننے کو نہیں کہا. ایسا نہیں کہا جاتا سب کچھ بیوی بچوں کو چھوڑ دو اور جنگل میں چلے جاؤ اور اللہ اللہ کرو, یہ نہیں ہے. بلکہ بات سمجھائی جا رہی ہے, دین کہتے طریقہ صحیح کرو. استنجے کا طریقہ, کھانے پینے کا طریقہ, کپڑے پہننے کا طریقہ, ہر چیز کو طریقے سے کرو. اسی کو تو اطاعت کہتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سارے لوگ جنت میں جائیں گے مگر جس نے انکار کیا. تو کس نے انکار کیا؟ کہ میری اطاعت کرنے والا جنتی ہوگا और मेरी बातों को न मानने वाला, मेरी इताअत न करने वाला, गोया वो नाफरमानी करने वाला और दोजख में जाने वाला है। इसलिए कि अगर आदमी को जन्नत में जाना हो तो जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को अपनाना पड़ेगा। जैसे अंधे आदमी को कहीं जाना हो तो देखने वाले का सहारा पकड़े, अंधे आदमी को कहीं जाना हो तो देखने वाले का सहारा लेना पड़ेगा कि देखने वाले का कंधा पकड़ लेवे, हाथ पकड़ लेवे, रस्सी पकड़ लेवे। तो अंधा आदमी बगैर देखे जाएगा तो ठोकर खाएगा, देखने वाले के सहारे जाएगा तो मंजिल मकसूद तक पहुंच जाएगा। ऐसे मरने के बाद की जिंदगी के बारे में हम सब अंधे हैं और जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखने वाले हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरत के बारे में देखने वाले हैं। अल्लाह ताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज में बुलाया और जन्नत जहन्नम की सैर कराई और राजो नियाज की बातें की और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब देख कर आए। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखने वाले हैं, हम सब अंधे हैं। तो जैसे अंधे आदमी को कहीं जाने वाले तो देखने वाले का सहारा पकड़े, ऐसे हम सबको मरने के बाद की जिंदगी में कामयाब होना हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीकों को अपनाना पड़ेगा। हर काम हम सब तरीके से करेंगे, उसी को इताअत कहते हैं, इताअत उसी का नाम है, ये मेहनत इसी की है। तो हम सब की जिंदगी में अल्लाह का मुबारक दीन आ जाना चाहिए। तो दीन उसको नहीं कहते हैं कि दुनिया छोड़ दो, बल्कि दुनिया में रहकर तरीका हम सही करना है। जैसे कश्ती बगैर पानी के नहीं चलती, ऐसे बगैर दुनिया की चीजों के हम रह नहीं सकते। कश्ती को चलने के लिए जितना पानी जरूरी, उतना ही हमें दुनिया में रहने के लिए दुनिया जरूरी। लेकिन कश्ती उस वक्त तक चलेगी जब तक पानी के ऊपर होगी। अगर कश्ती में पानी आ गया तो डूब जाएगी। ऐसे हम सबके सबको दुनिया से इनकार नहीं है, लेकिन तरीका सीखना पड़ेगा और हमारे दिल में दुनिया ना आ जावे। इसलिए कलमे का मफहूम ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह के कोई इबादत के लायक नहीं, कोई माबूद नहीं, कोई पूजने के लायक नहीं। हजरत मौलाना हम सब रहमतुल्लाह अलैह का तर्जमा फरमाते थे, कोई जी लगाने के काबिल नहीं अल्लाह के सिवा। जी अल्लाह में लगना चाहिए, जी अल्लाह में लगना चाहिए। हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह के बारे में लिखा है कि असर की नमाज का वुजू कर रहे थे, वुजू कर रहे थे, खादिम ने आके खबर दी कि हजरत हमारा जो पानी का जहाज जो कारोबार के लिए दूसरे मुल्क जा रहा था डूब गया। तो एकदम कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। फिर एक दो घंटे के बाद खालिद ने आके खबर दी कि वो खबर गलत थी, वो जो पानी का हमारा माल भर के जो जहाज जा रहा था वो बच गया, जो डूबा वो और किसी का था, हमारा तो बच गया, किनारे लग गया। तो कहने लगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो खालिद ने बरवक्त पूछ लिया कि अच्छी खबर पर अल्हम्दुलिल्लाह होता है, बुरी खबर पर इन्ना लिल्लाह होता है। तो आपने हमने आपको खबर दी कि पानी का जहाज डूब गया तो भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा, और जब ये खबर दी कि पानी का जहाज बच गया, किनारे लग गया, तो भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। तो क्या बात थी, दोनों भी आपने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। क्या मैंने जहाज के डूबने या बचने पर अल्हम्दुलिल्लाह नहीं कहा? बल्कि मोमिन की तो शान ये होनी चाहिए कि दिल में अल्लाह बसा हुआ हो। जैसे ही मैं वुजू कर रहा था आपने मुझे खबर दी कि हमारा पानी का जो जहाज जा रहा था माल भर के वो डूब गया, तो मैंने अपने दिल को टटोला कि जहाज के डूब जाने के गम में कहीं दिल तो अल्लाह से फिर नहीं गया। तो जैसे आपने खबर दी कि जहाज डूब गया, तो मैंने अपने जैसे आदमी कोई कीमती चीज गुम हो गई, ऐलान हो कि अभी जिसके पैसे गुम हो गए हो तो खत जा के ले जावे, तो सब देखेंगे मेरे है कि गुम गए। किसी का मोबाइल तो फर्क भी मेरा मोबाइल कहाँ है, आदमी फर्क अपनी चीज को देखता है। तो खालिम ने जैसे ही कही बात कि आपका जहाज डूब गया, तो जहाज की तरफ नहीं देखा, मैंने अपने दिल को टटोला कि कहीं जहाज डूब जाने की बुरी खबर से मेरा दिल तो अल्लाह से हट नहीं गया। मैंने देखा दिल तो अल्लाह में लगा हुआ है, दिल तो अल्लाह में लगा हुआ है, तो मैंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। और दो चार घंटे के बाद आपने खबर दी कि जहाज तो हमारा बच गया, किनारे लग गया और किसी का डूब गया, तो जो उसके बच जाने की खुशी में मेरा दिल अल्लाह से हट तो नहीं गया, मैंने अपने दिल को टटोला। तो ये मोमिन की शान होनी चाहिए, मुसलमान इसे कहते हैं। इसलिए अल्लाह के रास्ते निकाल कर जो छह नंबर समझाए जाते हैं, तो इसमें तीसरा नंबर समझाया जाता है जिक्र, इल्म जिक्र। तो इल्म जिक्र के भाई हाल के अमर को पहचानना, अल्लाह का ध्यान नसीब होना। क्या मतलब हाल का अमर पहचानना? कि हर वक्त आदमी ये सोचे कि मेरा अल्लाह मुझसे क्या चाह रहा है, आदमी अगर कारोबार कर रहा है दुकान पे, तो दुकान पे अगर दुकान करेगा, धंधा कोई भी कारोबार करेगा, तो 100 की चीज 110 में बेची, वो 10 रुपया हमारा नफा नहीं है, वो 10 रुपया तो हमारा मुनाफा, वो 10 रुपया तो हमारा मुकद्दर है, वो हमारा नफा नहीं है, वो हमारा मुकद्दर है। हमारा नफा ये है कि हमने सच बोल के बेचा, सामने वाला खुश होके जावे। एक साहबी रजी अल्लाह तआला ने मस्जिद के बाहर दुकान लगाई और दुकान बहुत अच्छी चल रही थी। एक मुद्दत तक दुकान चली, बहुत अच्छी चल रही थी, एकदम से बंद कर दी। किसी ने पूछा कि आपकी दुकान बहुत अच्छी चल रही थी, आपने कैसे बंद कर दी? कि मैंने जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि कोई आदमी कोई चीज खरीदे, कारोबार करे और कोई चीज बेचे, सामने वाला वापस लेके आवे तो बगैर आनाकानी की वापस ले लेवे, उसके लिए जन्नत वाजिब है। तो मुझे तो कारोबार करना नहीं था, मैंने हदीस पर अमल करने के लिए दुकान लगाई थी, तो मेरी दुकान चल रही थी। मैं मुंतजिर था, इंतजार में था कि कब कोई वापस आवे और मैं उसको वापस लेके उसका पैसा वापस दे दूं। तो आज 6 माह के बाद ग्राहक वापिस आया, ग्राहक वापिस आया तो मैंने उसकी चीज वापस लेके पैसा वापस लौटा लिया, ताकि मेरे लिए जन्नत के वाजिब होने का फैसला हो जावे। तो सहाबा रज़ी अल्लाह तआला ने ऐसे थे, मुसलमान को तो ऐसा होना चाहिए। तो हाल के अमर को पहचानना, तो कहा कि 100 की चीज 110 में बेची तो 10 रुपया हमारा मुकद्दर है, नफा नहीं है। नफा तो ये है कि हम सच बोल के कारोबार करें, और 100 की चीज 90 में गई तो 10 रुपया हमारा नुकसान खोट नहीं है, बल्कि वो तो हमारा 10 रुपया 100 की चीज 90 में गई, ये हमारा मुकद्दर है। नुकसान ये है कि हमने झूठ बोल के कारोबार किया, हमने डंडी मारी या कोई ऐप था तो उसको छुपा दिया। इसलिए अल्लाह के रास्ते में निकाल के लिए जो 6 नंबर समझाए जाते, दावत की मेहनत के जो 6 सिफाते, वो 6 सिफात 6 नंबर नहीं है, वो जिंदगियों में दीन लाने की मेहनत है। अल्लाह के रास्ते में निकाला जाता है और अल्लाह के रास्ते में निकालकर 6 सिफात समझाए जाते। पूरी दुनिया बेदीनी का शिकार है, पूरी दुनिया बेदीनी का रोग दुनिया में फैला हुआ है। इस पूरी दुनिया की बेदीनी को सामने रखकर अल्लाह वालों ने 6 सिफात तजवीज किए हैं। ये जो 6 नंबर है, ईमान, नमाज, इल्म, जिक्र, इकराम, इखलास, दावत इल्लाह। ईमान यानी कलमा पढ़ना, ईमान बनाना। नमाज यानी नमाजों का एहतमाम करना। इल्म यानी इल्म को सीखना। जिक्र यानी तस्बीहात की पाबंदी करना। इकराम यानी लोगों की इज्जत करना, बड़ों की इज्जत, छोटों पर राम, उलमाए दीन की कदर। इखलास यानी अपनी नीयत को सही करना, अपनी नीयत को सुधारना। और दावत इल्लाह यानी लोगों को दीन की तरफ बुलाना, अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाना, अल्लाह के रास्ते में जाना। ये 6 नंबर है, हर नंबर का कोई ना कोई मकसद है। ईमान से बात चाही जाती है, हम सब के दिलों का यकीन सही हो। दुनिया की तमाम चीजें अल्लाह की मोहताज, अल्लाह किसी का मोहताज नहीं, किसी से कुछ नहीं होता, अल्लाह से होता है। नमाज से ये बात चाही जाती है, 24 घंटे की जिंदगी सिफत सलात पे आवे और हम बराह रास्त अल्लाह के खजाने से लेने वाले बने। इल्म से ये बात चाही जाती है, तहकीकात का जज्बा पैदा हो, हर बात को उलमाए किराम से पूछ पूछ कर करने वाले बने। जिक्र से बात चाही जाती है, अल्लाह का ध्यान नसीब हो। हुकूमत का ध्यान होता है कि सीसीटीवी कैमरे हैं, अगर ओवर स्पीड गाड़ी जाएगी तो घर पे फरफरी आ जाएगा, मोबाइल पे मैसेज आ जाएगा कि आपने गाड़ी 120 पे चलाई, वो रास्ता तो 80 की स्पीड का था। तो हुकूमत का ध्यान है तो आदमी के लिए हुकूमत के कवानीन पे अमल करना आसान। ऐसे बंदे को अल्लाह का ध्यान होगा, अल्लाह के हुक्म को पूरा करना आसान होगा। इसके लिए तस्बीहात की पाबंदी है। ये जो अल्लाह का नाम है, अल्लाह का नाम लिया जाता है, तस्बीहात की पाबंदी समझाई जाती है। ये अल्लाह का नाम लेंगे, इतना अल्लाह का जिक्र करो कि लोग तुम्हें पागल और मजनून कहने लगे, और अल्लाह का ध्यान नसीब हो जावे। जैसे दुनिया वालों को हुकूमत का ध्यान है तो हुकूमत के कानून पे अमल करना आसान, ऐसे अल्लाह के बंदे को अल्लाह का ध्यान नसीब हो जाएगा तो अल्लाह के हुक्मों को पूरा करना आसान हो जाएगा। जिसे मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह फरमाया करते थे, असल जिक्र ये कि आदमी हर वक्त का हुक्म पूरा करने वाला बने। तस्बीहात की पाबंदी वो असल जिक्र नहीं है, असल जिक्र ये है कि आदमी अल्लाह के हर वक्त का हुक्म पूरा करने वाला बने। इस पर खड़ा करने के लिए तस्बीहात की पाबंदी है। یہ تسبیحات کی پابندی اس کے لیے ہے. تیسرا کلمہ ہے, درود پاک ہے, استغفار ہے, مسنون دعا کا اہتمام ذکر میں داخل ہے. حضرت مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرما کرتے تھے, مسنون دعاؤں نے مقبولیت کے راستے دیکھے ہیں. یہ جتنی مسنون دعا ہے اس میں ایمان ٹپکتا ہے. ابھی صبح اٹھے تو پڑھنے کی دعا, الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور, کہ وہ اللہ جس نے ہمیں مرنے کے بعد اٹھایا, موت دینے کے بعد دوبارہ زندہ کیا. احیانا بعدما اماتنا, اللہ نے موت دے کے اٹھایا. اس حدیثوں میں ہے کہ نیند موت کی بہن ہے. جس آدمی مر جاتا ہے کچھ پتہ نہیں چلتا, ایسے جب تک سو گیا جب تک بیدار نہیں ہوتا اسے کچھ پتہ نہیں چلتا کیا ہو رہا ہے. اس لیے روزانہ سونے کے موقع پہ سونے کی دعا, اللہم فی اسمی کا اموت و احیا, اس کا ترجمہ ہے اللہ تیرے نام سے مرتا ہوں, تیرا حکم ہوگا تو زندہ ہوں گا. اب آدمی کو دھیان ہو کہ میں سوتا ہوں, اور یہ بھی دھیان ہو کہ آج میں سوتا ہوں صبح اٹھوں گا, کل موت کے موقع پہ سوؤں گا تو قبر میں اٹھوں گا. روزانہ آدمی سستے کے ساتھ سوئے کہ میں سوتا ہوں صبح اٹھوں گا, اموت و احیا, تیرے نام سے مرتا ہوں اور صبح تو مجھے زندہ کرے گا, یعنی تو مجھے اٹھائے گا. تو روزانہ آدمی سوتا ہے, لیکن جس دن سوئے گا اللہ موت کی نیند سلائے گا تو اس کو قبر میں اٹھنا پڑے گا. آدمی اس دھیان کو پیدا کرے, یہ دھیان روزانہ ہم کو پیدا ہو تو ذکر سے بات چاہی جاتی ہے, اللہ کا دھیان نصیب ہو جائے. اور اللہ والوں نے کہا ہے کہ ذکر الگ الگ معنوں میں آتا ہے. ایک تو ذکر کرنا اللہ کے نام سے, یعنی تسبیحات کی پابندی کرنا, اور مسنون دعاؤں کا اہتمام کرنا, قرآن پاک کی تلاوت کا اہتمام کرنا. تو ایک اللہ کو یاد کرنا اللہ کے نام سے, ایک اللہ کو یاد کرنا اللہ کے احکام سے, یعنی حکموں کو پورا کرنا. ایمان کے بعد سب سے بڑا حکم نماز کا ہے, اس نماز کو سیکھ کر پڑھنا. تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا اللہ کے احکام سے, یعنی جتنے احکام آتے ان احکامات پر عمل کرنے کی کوشش کرنا. اور ایک اللہ کو یاد کرنا اللہ کے کام سے, جینو کھئیے اینو گئیے, جس کا کام ہے اس کا گاوے, یعنی اللہ کا کام کرنا, اللہ کے دین کی محنت کرنا. ہر چیز زندگیوں میں محنت سے آتی ہے, دین بھی زندگیوں میں محنت سے آتا ہے. یہ محنت اس کی محنت ہے, چھ صفات اس کے لیے سمجھائے جا رہے ہیں کہ بے دینی کا روگ ہے وہ دور ہوگا دعوت کی مبارک محنت سے. یہ چھ صفات زندگیوں میں آنے سے, اکرام سے یہ بات چاہی جاتی ہے, ہم سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے, ہم سے سارے لوگوں کو راحت پہنچے. یہ تو ادنا چیز ہے, بڑوں کی عزت, چھوٹوں پر رحم, علماء دین کی قدر کرنا, اصل اکرام سے بات چاہی جاتی ہے. مولانا ابراہیم صاحب فرماتے, اپنے دین کو چوتھے نمبر کا تالا لگاؤ, اپنے دین کو چوتھے نمبر کا تالا لگاؤ. کہ جیسے دنیا میں تالا لگتا ہے چیز کی حفاظت کے لیے, ایسے اکرام ہوگا تو عمل باقی رہے گا, ورنہ سارا کرا کرایا بیکار ہو جائے گا. وہ حدیث میں ایک نبی صاحب نے صحابہ سے پوچھا, مفلس کون؟ صحابہ فرمایا, جس کے پاس پھوٹی کوڑی نہ ہو, روپیہ پیسہ نہ ہو, کہ مفلس وہ نہیں ہے. میری امت کا مفلس وہ ہے, کل قیامت میں اتنے نیکیاں لے کے آئے گا کہ پہاڑ پہ رکھ دی جاوے تو پہاڑ دب جاوے. لیکن حق لینے والے آئیں گے, حق والوں کا حق ادا نہیں کیا ہوگا تو وہاں حق لینے کے لیے آئیں گے لوگ کل قیامت کے دن. تو اس کے پاس تو کچھ ہوگا نہیں, تو اس کی جو نیکیاں ہوگی اس حق کے بدلے میں دے دی جائے گی. ایک ایک آنے کے بدلے میں 700 مقبول نمازیں دے دی جائے گی. تو نیکیاں تو اتنی تھی کہ پہاڑ دب جاوے, جیسے ملک عرب کے پہاڑ. لیکن لوگوں کے حق دبائے ہوں گے, کسی کو گالی دی ہوگی, کسی کا حق دبایا ہوگا, تو وہاں ساری نیکیاں دے دی جائے گی, پھر بھی حق لینے والے باقی رہیں گے تو لوگوں کے گناہ اس کے سر پہ ڈال دیے جائیں گے, اس کو اونچے منہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. اصل مفلس یہ ہے, اس نے کہا کہ اپنے دین کو چوتھے نمبر کا تالا لگاؤ. اخلاص سے یہ بات چاہی جاتی ہے, اللہ کی رضا کا جذبہ نصیب ہو, ہر کام اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرنا. اور چھٹے نمبر سے بات چاہی جاتی ہے, جان مال کے دھوکے سے بچنا. جان اللہ کی, مال اللہ کا, ہم اپنا سمجھ کے استعمال کر رہے ہیں, بہت بڑا دھوکہ ہے. اس دھوکے سے نکلنے کے لیے اللہ کے رہتے کی 4 مہینے کا خروج ہے. اس سے کسی جگہ یہ بات سمجھائے گی, یہ جو 6 نمبر ہے, ایمان, نماز, علم, ذکر, اکرام, اخلاص, دعوت اللہ, پہلا نمبر کون سا؟ दूसरा तीसरा चौथा पांचवा और छठा। मेरा अकेले का जितनी आवाज आती है आप इतने सारे लोगों की आवाज नहीं आ रही है। पहला नंबर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। तो किसी जगह समझाया गया ईमान पर मेहनत करोगे कुफ्र शिर्क से बचोगे, ईमान पर मेहनत करोगे कुफ्र शिर्क से बचोगे, नमाज पर मेहनत करोगे गुनाहों से बचोगे, नमाज पर मेहनत करोगे गुनाहों से बचोगे, इल्म पर मेहनत करोगे जहालत से बचोगे, इल्म पर मेहनत करेंगे, जिक्र पर मेहनत करेंगे गफलत से बचेंगे, जिक्र पर मेहनत करेंगे और इकराम पर मेहनत करेंगे दुश्मनी से बचेंगे, इकराम पर मेहनत करेंगे। और जिसका लिया उसका लिया इसलिए दुश्मनी है, हक वाला का हक अदा करो। सारी दुनिया में लेने के झगड़े, देने का कहीं झगड़ा नहीं है। वो तो सहाबा का दौर था और पहले के जमाने का दौर था। बनी इसराइल का भी किस्सा लिखा है, हजरत उमर के जमाने का भी किस्सा लिखा है कि एक आदमी ने एक आदमी को जमीन बेची, एक आदमी ने एक आदमी को जमीन बेची, बेच दी, बात खत्म हो गई। मुद्दत गुजरने के बाद जिसने वो जमीन खरीदी थी उसने सोचा मैं मकान बनाऊं, तो मकान बनाने के लिए वो नीचे काम पाए का काम शुरू किया, बुनियाद खोदी, पाए खोदे मकान बनाने के लिए कि भाई चलो नीचे काम शुरू करो फाउंडेशन का। तो अंदर से चरू निकला, मर्तबान निकला, तांबे की पूरा बहुत बड़ा मटका और घड़ा और उसमें सोना मोहरे रखी हुई है। इस आदमी ने उसको उठाया और जिससे खरीदा था उसके घर गया और कहा कि अरे भाई एक मुद्दत पहले मैंने तुझसे मकान बनाने के लिए जमीन खरीदी थी, इंतजाम नहीं था, अभी इंतजाम हुआ है, मैंने मकान बनाना शुरू किया, अंदर से सोना चांदी के सिक्के निकले, ये तेरा तू ले ले। उसने कहा भाई मैंने तुझे बेच दी, तू मालिक है। उसने कहा मैंने तो जमीन खरीदी थी, चरू नहीं खरीदा था, मर्तबान और सोने चांदी के मोहरे और सिक्के नहीं खरीदे थे। वो कहा नहीं भाई मैंने बेच दिया, मैं नहीं ले सकता। उसने कहा मैंने तो जमीन खरीदी, जमीन ही लूंगा, और हमारा जमाना हो तो किसी को पता भी नहीं चले, किसी को देवे भी नहीं, हमारे यहां लेने के झगड़े वहां देने के झगड़े थे और देने के झगड़े। तो दोनों उसको दोनों उस वक्त जो काजी थे उस काजी के पास गए और जाके आपने मुकदमा दर्ज करवा दिया कि कह रहे मैंने जमीन खरीदी थी, चरू निकला उसका है, वो लेता नहीं है। वो कहते मैंने बेच दी, मैं ले ही नहीं सकता। दोनों को अलग अलग भी समझाया लेकिन दोनों मानने के लिए तैयार नहीं। तो अल्लाह ने दिल में बात डाली, दोनों को पूछा आपकी औलाद है, तो एक का बेटा था एक की बेटी थी और जवान थे, शादी की उम्र का को पहुंच गए थे। तो उनके दिल में अल्लाह ने बात डाली ऐसा करो दोनों की शादी करवा दो, कोई बात नहीं है आप तय करो तो कर लेंगे। तो दोनों की निकाह करवा दिया, दोनों को हदिया दे दिया। तो अल्लाह ने रास्ता निकाला। तो कुछ जमाने में देने के झगड़े थे, आज के जमाने में लेने के झगड़े। ये चौथा नंबर इसके लिए है, चौथा नंबर इसके लिए है कि इकराम पर मेहनत करोगे तो दुश्मनी से बचोगे, इखलास पर मेहनत करेंगे दिखलावे से बचेंगे। अल्लाह का ऐसा ने दावत की मुबारक मेहनत की बरकत से इतना सारा खर्च भी हो रहा है, लेकिन अगर दाहिने हाथ ने किया तो बाएं हाथ को पता नहीं चलता। ये तबलीग की बरकत से अल्लाह ताला ने ये लोगों को पता चला इखलास कौन से जानवर का नाम है। वरना पहले के जमाने में शादियां होती थी तो एक छोटी तपेली भी शादी में हदिया देवे तो उस पर मशीन से लिखवा देते थे कि ये तपेली किसने दी। मस्जिद में किसी का इंतकाल हो जावे तो घड़ियाल के कांच पर लिखते थे ये घड़ी किसने रखी है मस्जिद में। माई की डंडी पे लिख देते थे, कुर्सी के पायों पे लिख देते थे, ये कुर्सी मकोड़े जैसे उरूस से लिखते थे। पहले पेंटर तो थे नहीं तो ऐसे ही लिख दिया जाता था कुर्सी किसने रखी। तो पहले वाह वाह का नामो नमूद का जज्बा था, लेकिन इस मुबारक मेहनत की बरकत से आज लाखों रुपये का एसी, लाखों रुपये का मशीन, करोड़ों की मस्जिदें बनती है, लेकिन किसी को नहीं मालूम कौन कर रहा है। तो ये दावत की मुबारक मेहनत है, तो मेहनत सीधी सादी है। इस मेहनत की सादगी ने लोगों को धोखे में डाला है। तो इखलास पर मेहनत करोगे दिखलावे से बचोगे, और का दावत पर मेहनत करोगे तो बेदीनी से बचोगे। पूरी दुनिया बेदीनी का शिकार है, उसके लिए दावत की लाइन से मेहनत करनी चाहिए। तबलीग की लाइन से मेहनत होगी, दावत का मुबारक काम होगा तो लोग बेदीनी से बचेंगे। इसे किसी जगह सुना, ईमान से अमल जिंदा होगा, ईमान से अमल जिंदा होगा, नमाज से अमल जाहिर होगा, नमाज से अमल जाहिर होगा, इल्म से अमल मुकम्मल होगा, इल्म से अमल मुकम्मल होगा, और जिक्र से अमल जानदार बनेगा, अमल में जान पैदा होगी, और इकराम से अमल महफूज होगा, हिफाजत में रक्षण में आ जाएगा, इकराम से अमल महफूज होगा, और इखलास से अमल कीमती बनेगा, इखलास से अमल कीमती बनेगा, और दावत से अमल दूसरों में मुंतकिल होगा, दावत से अमल दूसरों में जिंदा और मुंतकिल होगा। तो हर जमाने में अल्लाह ताला अलग अलग लाइन से काम लेता है। इस जमाने में दावत की मुबारक मेहनत की बरकत से लोगों की जिंदगियों में दीन आ रहा है, वरना पहले बुढ़े लोग मस्जिदों में आते थे, दाढ़ी तो कोई रखता ही नहीं था, सर पे टोपी रखना भी एक आर और शर्म महसूस होती थी, इतने मदारिस नहीं थे, इतने उलमाए किराम नहीं थे। इस वक्त जितना दीन दिखाई दे रहा है, अल्लाह ताला ने इस मेहनत को जरिया बनाया है। मेहनत सीधी साधी है, उस मेहनत को अपना ओढ़ना बिछोना बनाना चाहिए, लेकिन हर चीज जैसे मेहनत से काबू में आती है, तो ये दीन और ये मेहनत भी जिंदगियों में मेहनत से काबू में आता है। ये हमारा इज्तिमा दो दिन से माशाल्लाह बयानात हो रहे, आइंदा कल अभी दुआ होने वाली है, ले रात को भी जैसे तश्कील हुई, लेकिन जैसे होने चाहिए नाम नहीं आए, खत्म होने वाली दुनिया के पीछे बरसों लगा दिए, और दीन के लिए चार महीने मांगे जाते हैं, आदमी को मुश्किल लगता है, दीन के लिए चार महीने मांगे जाए, इतना मुबारक दीन, इतना कीमती दीन जिंदगियों में मेहनत से आएगा, और हमारे मेहनत करने से क्या होगा, लेकिन अल्लाह ताला हर जमाने में अलग अलग लाइन से काम लेता है। जैसे पानी सीधा साधा होता है, लेकिन पानी की बरकत से सब चीजों में तासीर आती है, मिर्ची की तिखास पानी से, तरबूज की लालास पानी से, और शेरडी की मिठास पानी से, और अनानास की पिलास पानी से, दुनिया की सब चीजों की तासीर अल्लाह ताला ने पानी पे मौकूफ रखी है। ऐसे मेहनत और काम सीधा साधा है, हमारे चिल्ले चार महीने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारा चिल्ला चार महीना लगाना जो है, वो इसकी बरकत से बहुत आसानी से गैर महसूस तरीके से जिंदगियों में दीन आएगा। अब हमसे चार महीने मांगे जाते हैं, हमसे चिल्ला मांगा जाता है, लेकिन हम सोचते नहीं है जाने के बारे में। इतना बड़ा मजमा था, रात को तश्कील हुई, चार माह की तश्कील हुई, आठ नौ नाम आए, चिल्ले की तश्कील हुई, कोई खड़े नहीं हुए, हालांकि इतना बड़ा इलाका, इतना बड़ा जिला, बीस तकरीबन जोन, हर जोन में पंद्रह पंद्रह बीस बीस घर होंगे, कितनी सारी वाड़ियां, कितनी सारी मस्जिदें, लेकिन अभी हमने जिसको दिल पर लिया नहीं है, वो दिल पर लेने की जरूरत है। हमारे जाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हमारा अल्लाह के रास्ते में वक्त लगाना, ये हाथ पैर मारना है, जिससे डूबते को तिनके का सहारा, आदमी हाथ पैर मारता है तो बच जाता है। एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे फजल करीम साहब रहमतुल्लाह अलैह, हमारे गुजराती के थे, वो एक आसान मिसाल देते थे, अल्लाह के रास्ते में चार महीने लगाना, अल्लाह के रास्ते की कुर्बानी देना, कि हमारी कुर्बानी देने से क्या होगा, हम कुर्बानी तो दुनिया के खातिर देते ही है, लेकिन दीन के खातिर चार महीने लगाएंगे तो ये बहुत आसान और कम मेहनत होगी, लेकिन फायदा बहुत बड़ा हो जाएगा। पर ऐसी मिसाल देते थे, नहीं समझाते थे, कि एक मरतबा जंगल के अंदर एक जंगल था, जंगल में बहुत बड़ा शेर था, और जंगल का राजा ऐसे भी शेर होता है, तो जंगल बहुत बड़ा था, घना जंगल था, सारे ही जानवर अपने अपने कामों में लगे रहते थे, और एक शेर भी था, एक लोमड़ी थी शियार, लोमड़ी थी शियार, वो अपनी पोल में किसी खुफा गुफा के अंदर, कोख के अंदर बैठी रहती थी, वो अपने बच्चों को लेके, उसके बच्चे, उसको भी आई तो बच्चे भी हुए थे, वो अपने बच्चों को संभाल रही थी, उसने देखा कि दूर से शेर आ रहा है। अब सोचा कि शेर तो किसी भी जानवर को जंगल में खा जावे, पंजा मारे और खा जावे, तो लोमड़ी ने देखा कि अभी शेर आ रहा है, और शेर अभी मेरे बच्चों को खा जाएगा। आदमी अपने बस की कोशिश करे तो अल्लाह की मदद आती है, मुझे यही समझाना है, चार महीने जाना, चिल्ला जाना, अल्लाह के दिन की मेहनत करना, वो अपने बस की कोशिश है। अल्लाह के दिन की खातिर तो लोगों ने गर्दनें कटाई, औरतों को बेवा बच्चों को यतीम करवाया, खून बहाया, हम क्या कर सकते। आज के जमाने में पसीना बहाना है और जज्बात को कुर्बान करवाना है, और अल्लाह के रास्ते में मस्जिद की चटाई पे सोना है, पंखों के नीचे, एसी में खाने का इंतजाम होता है, बस हमारी क्या कुर्बानी है, अल्लाह के रास्ते में जाने की कुर्बानी क्या। पहले के जमाने में तो कैसी कुर्बानी, कि अपने बच्चों को यतीम करवाना, और अपनी अपनी कब्रों को मुल्कों में बना देना, ऐसी कुर्बानी होती थी। लेकिन आज के जमाने में हमारा ये अल्लाह के रास्ते में जाना और कुर्बानी देना ये मामूली बात है, लेकिन इसकी बरकत से गैर महसूस तरीके से जिंदगियों में दीन आता है। मैं क्या कह रहा था जी, लोमड़ी वाली बात मैं कह रहा था। वो लोमड़ी अपने बच्चों को संभाल रही और शेर आया, इसने सोचा कि शेर मेरे बच्चे को खा जाएगा तो मुझे अपने बस की कोशिश करनी चाहिए, क्या करूं। तो अल्लाह ने उसको सुझाया, उसने एक लकड़ी ले ली, एक लकड़ी ली और अपने बच्चों को लोमड़ी मारने लगी कि रोजाना तुझे शेर का गोश्त खिलाऊं, तू कहती है मुझे शेर काट के शेर का गोश्त खिलाओ, शेर का गोश्त खिलाओ, रोजाना कहां से शेर लाने का, रोजा सो जा। यूं कह के तीन चार लकड़ियां मारी बच्चे को, अपने बच्चों को बचाना था तो कोशिश की, शेर आ रहा है। अब शेर शेर होता है, वो अगर धरार और गर्जना भी करे तो सारे जानवर मर जावे, लेकिन इसने अपने बस की कोशिश की कि शेर से अपने आप को अपने बच्चों को कैसे बचाना, तो उसने उसको लकड़ी से मारना शुरू किया और कहा रोजाना तुझे बहुत का गोश्त खिलाऊं, रोजाना शेर का गोश्त तुझे कहां से लाके खिलाऊं। शेर ने सुना तो कान ऊंचे हो गए कि ये कौन है रोजाना अपने बच्चों को शेर का शिकार करके गोश्त खिलाती है, अगर आज मैं उसके हाथ में आ गया तो मेरी खैर नहीं है। वो दुम दबा के भागा, वो शेर दुम दबा के भागा कि अब तो मेरी खैर नहीं है। इसने अपने बस की कोशिश की तो वो शेर को भागने पर मजबूर होना पड़ा। वो भाग रहा था, दूर उससे दूर एक बंदर दरख्त पे बैठा था। बंदर ने देखा कि शेर भाग रहा है, क्या बात है, तो कहा शेर खड़े रहो, आप तो बादशाह है, कभी न आज आप दुम दबा के और घबराते हुए हाँपते हुए भाग रहे, क्या बात है, हाँपते कांपते आप भाग रहे, क्या हुआ। तो कहा तुझे मालूम नहीं है, हमारे जंगल में एक लोमड़ी आई है, रोजाना एक शेर का शिकार करके अपने बच्चों को खिला देती है, मार डालती है, अब मैं जी बचा के बच गया और आ गया, वरना मेरी तो खैर नहीं थी। बंदर ने कहा ऐसा तो हो नहीं सकता, लोमड़ी क्या कोई भी जानवर, आप खाली गर्जना और धराल कर दो तो सारे जानवर मुंह देवे, ये हो नहीं सकता। बोले नहीं हकीकत में। बंदर ने कहा चलो मैं आपके साथ आता हूँ। तो फिर वो बंदर ने जहन बनाया शेर का, चलो मैं आपके साथ आता हूँ, आपकी समझ फेर है, आपको गलत फहमी हुई है, मैं आपके साथ आ रहा हूँ। ये फिर वापिस आ रहे तो थोड़ी देर के बाद वो लोमड़ी ने देखा कि बंदर भी उसको लेके आ रहा है। बोले अब क्या करेंगे, कल तो वो रास्ता अपनाया था, कौन सा, कि रोजाना शेर का गोश्त कहां से खिलाऊं, रोजाना शेर का गोश्त कहां से खिलाऊं। दो बार बोले अब क्या करें, आदमी कोशिश करे तो अल्लाह सुझाता है। तो इसके दिल में बात है कि और कुछ करना पड़ेगा, अपने बस की कोशिश तो करो। तो इसने कहा कि देखो शिकार ढूंढने के लिए बंदर मामा को भेजा है, अगर शिकार मिलेगा तो जरूर लेके आएगा, तो तुम्हें काट के खिलाऊंगी। बंदर को भेजा है शिकार को ढूंढने के लिए, अगर मिल जाएगा तो जरूर वो पकड़ के लेके आएगा। तो शेर ने सोचा कि ये बंदर लोमड़ी का आदमी है और मुझे मार डालेगा। तो फिर वो बंदर को एक लात मारी तो बंदर तो वहीं गिरा और शेर भागा, अभी भी भाग रहा है वो शेर भागा। ये लोमड़ी ने अपने बस की कोशिश की तो अल्लाह की मदद आई। तो जैसे हमारा अल्लाह के रास्ते में कुर्बानी देना ऐसा है जैसे लोमड़ी का अपने बच्चों को समझाना, उसने अपने बस की कैसी कोशिश की लेकिन अल्लाह की कैसी मदद आई। ये फजल करीम साहब रहमतुल्लाह अलैह मिसाल देकर मजमे की तश्कील करते थे और मजमे को समझाते थे। और जाएगा कौन, तलब वाला जाएगा और तलब वाले को अल्लाह कबूल करता है। हजरत मौलाना उमर साहब पालनपुर रहमतुल्लाह अलैह मजमे की तश्कील करते थे तो एक शेर पढ़ के मजमे की तश्कील कर देते थे। शेर जानते हो शायरी को कहते हैं, तो मौलाना शायरी पढ़ते थे, न गोरी को देखे न काली को देखे, सिया जी से चाहे सुहागन वही बने। मौलाना कहते थे न गोरी को देखे न काली को देखे, पिया जिसे चाहे सुहागन वही बने, कि दुल्हन वही बनती है जिसे दूल्हा चाहता है। तो मौला फरमाते जमात में वही जावे जिसको अल्लाह ले जावे, पिया जिसे चाहे सुहागन वही बने, यानी अल्लाह जिसको चाहे वो अल्लाह के रास्ते में चार महीने चिल्ले के लिए निकल सकता है। तो अल्लाह ताला तलब वालों को कबूल करता है, तो अपनी तलब दिखाना ऐसा है और चार महीने जाना ऐसा है जैसे लोमड़ी ने अपने बस की कोशिश की। हमें भी अपनी तरतीब अल्लाह के रास्ते में जाने की बनानी चाहिए। कल से माशाल्लाह अल्लाह ताला ने हम सबको इज्तिमा में पहुंचाया है और इज्तिमा तो हमारे यहाँ तो दीन के मजलिस में खाली कहना सुनना मुजाकरा नहीं है बल्कि असल अल्लाह के रास्ते की नकलो हरकत है। अल्लाह के रास्ते में जाना है, अल्लाह ताला कुर्बानी मांगता है, कुर्बानी लेता नहीं है। ये खत्म होने वाली दुनिया के लिए बरसों लग गए, अगर अल्लाह के दीन के लिए 4 महीने लगा देंगे कोई बड़ी बात और मुश्किल बात नहीं है। हम सबको अपनी तरतीब बनानी चाहिए, इससे पूरा मजमा क्या करो, हम लोग भी अपनी तरतीब अल्लाह के रास्ते में जाने की बनानी चाहिए। इसके लिए तय करके खड़े होकर हिम्मत फरमाए, अल्लाह के रास्ते इस्तेमा से जाने के लिए कौन कौन तैयार है? 4 महीने वाले भी खड़े हो जाए और चिल्ले वाले भी खड़े हो जाए, दोनों खड़े हो जाए, कौन कौन तैयार? माशाल्लाह खड़े हो जाओ, माशाल्लाह। और फरमाए माशाल्लाह, देखो मौली साहब भी खड़े हुए, डॉक्टर साहब भी खड़े हुए, और फरमाए हिम्मत करें, जमाते तैयार है, अफराद तैयार है, कितने सारे आपके जोन है, पूरा मांगरोर, या आपका वंथली, आपका जूनागढ़ और आपके मांगरोर के 12-13 हलके, और आपका ये जेतपुर वगैरह कितने सारे हलके हैं, हर हलके से बताने चाहिए। साथी मौजूद नहीं है तो बस्ती वाले बताए कौन सी मस्जिद से कितनी जमाते हैं, जोन वाइज बता रहे कि कौन से जोन से कितनी जमाते, चारमा की कितनी जमाते, चिल्ले की। फरमाए तो इससे हवाला आ जाए तफक्कुर, ताकि कारगुजारी तश्कील वालों के लिए आसान हो जाए तरतीब बनाना। हे मांगने वाले के सब घर चले गए, खुद नहीं जा रहे तो घर से कौन जाएगा? वो फरमाए तय करो कि इंशाल्लाह फिक्र करेंगे। देखो अभी इनफिरादी अमाल में लगे, अपनी जरूरियात से फारिग हो जावे, 9:30 बजे इंशाल्लाह हल्का लगेगा, तालीम का हल्का लगेगा, और जो मजलिस होगी उसमें शिरकत होने करने की कोशिश करे, और कोशिश करे इस्तेमाई अमाल में जुड़ने की। सुभान अल्लाह।